आज के हमारे शब जुमा के प्रोग्राम में एक तो 11वें इमाम और आसमान इमामत व विलायत के दरख्शां जो है नूरानी सितारे हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत थी जो गुजर गई, और आज जो है क्योंकि हज़रत मासूमा कुम बिन्त मूसा अपने जाफ़र बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम की जो है वफात का दिन भी है, तो दो जुमले बस दोनों मुनासिबात को लेकर आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि 11वें इमाम आली मकाम जानते हैं कि 28 रबीउल थानी को जो है सन 232 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में आपकी जो है शहादत का बताया है जो कि मशहूर तारीख है, लेकिन 8 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी को आपकी विलादत मुबारक हुई मदीने मुनव्वरा में। आपकी मजमूई जो उम्र शरीफ थी वो 28 साल बनती है, यानी बहुत ही ज़ाहरी तौर पर जो उम्र शरीफ है वो बहुत ही जवान साल है कि 28 साल में आपको शहीद किया गया है। मजमूई तौर पर आपने 6 साल रस्मी तौर पर कारए इमामत विलायत को अंजाम दिया है, और इन 6 सालों में क्योंकि एक सियासी बहरान था, 3 हुक्मरान ये के बाद दीगर बदले हैं, और बादशाहों और उनके लश्कर या अस्करी अदारा या जो भी आप नाम दे दें फौज के दरमियान हमाहंगी नहीं थी। उसकी वजह यह थी कि कौमियती फ़र्क मौजूद था दोनों में, एक अरब थे तो दूसरे तुर्क और बर्बर थे, ज़्यादातर फौजी कमांडर बर्बर और तुर्क थे, जिनकी वजह से बादशाह जो था वो सल्तनत और बादशाहत जो कि जुल्म और ज्यादती तो करती थी और इनके दबाव का शिकार भी रहती थी, तो इस तरह से कई किस्म के एक मसाइल और बहरान और अल्लाह गुले माशरे के अंदर थे कि जिसकी वजह से जो है जिसके असरात खानदान इस्मत तहारत पर भी पड़ते थे। आप 4 साल के थे तब आपके वालिद बुजुर्गवार को जबरी तौर पर मदीने से हिजरत कराने पर मजबूर किया गया, और आप अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ सामर्रा में जो कि वहाँ पर एक फौजी छावनी थी जिसको अरबी जबान में अस्कर कहते हैं, यानी जो अस्करी हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं वो इसी अरबी जबान के लफ्ज़ से अस्कर से है। अस्कर का मतलब है छावनी या फौज, अस्कर यानी फौज, अस्करी यानी छावनी या छावनी में रहने वाला या छावनी में रहाइश पजीर, क्योंकि इमाम आले मकाम की निगरानी के लिए और सख्ती के लिए आपको छावनी में आपके वालिद बुजुर्गवार को और आपको बिठाया गया था, तो यहीं से अस्करी के नाम से जो है इमाम का ये नाम ज़्यादा शोहरत पा गया। आपके दौर में अहले तशी की बहुत सारी तहरीकें भी उठी हैं वक्तन फवक्तन, और इस मुख्तसर अरसे में भी 6 साल के अरसे में भी आपको तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा जेल में रखा गया। तकरीबन सन 256 हिजरी बनती है, और सन 256 हिजरी से लेकर 257 हिजरी तक आपको तकरीबन जेल में रखा गया, फिर आपको जेल से आज़ाद किया गया। उसके बाद सन 260 हिजरी में जब फिर जो है सियासी मसाइल हुए तो फिर तकरीबन 1 से 1.5 माह के लिए आपको जेल में डाला गया। ये मुख्तसर चीज़ थी, लेकिन एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि इस मुख्तसर अरसे में आपकी जो खिदमात हैं मुस्लिम माशरे के लिए और इंसानों के लिए, उनमें एक अहम तरीन जो मसला था वो इल्मी खिदमात हैं, और इल्मी जो इन्हराफात हैं अकायदी इन्हराफात हैं उनका मुकाबला करना था, कि जिनमें सबसे अहम तरीन मसला कुरान मजीद के खिलाफ साजिश थी, जो कि कुरान के खिलाफ एक किताब लिखी गई एक उस जमाने के एक मशहूर दानिशवर नुमा शख्स इसहाक़ किंदी के नाम से, जिसका नाम रखा था अत्तनाकुज़ु फिल कुरान, यानी कुरान में मुतजाद बातें नऊज़ु बिल्लाह। इसके मुकाबले में इमाम आली मकाम ने उसके साथ गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू के बाद वो इस बात का कायल हुआ कि उसने जो है ये गलत किया है, और उसने माफ़ी मांगी और वापस जो है कुरान के फ़ज़ाइल में किताब लिखी। इसी को पेश नज़र रख कर इमाम आली मकाम ने तफसीर कुरान मकतूब शक्ल में यानी किताबी शक्ल में भी एक तफसीर कुरान बयान फरमाई, और अपने असाब से कहा कि इसे लिखें आप, क्योंकि अब जो है मसाइल बढ़ रहे हैं तो लिखें। इसी तरह इमाम आली मकाम की एक और किताब सहीफ़ा अस्करी के नाम से मौजूद है। ये तमाम किताबें इस वक्त हमारे पास मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन इन किताबों में जो कुछ इमाम आली मकाम ने लिखा था बाद के उलमा ने असर गईबत सुगरा और कुबरा में अपनी किताबों में ये जो तफासिर हैं इसको बयान किया, इसलिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी तफसीरें हैं जो तफसीरें आयत को रिवायात तफसीर करती हैं। मसलन सूरह यासीन की आयत नंबर फलां में के बारे में फलां इमाम ने यह फरमाया, उसमें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का। इसी तरह ये जो इल्मी इनराफात थे उसमें दो किस्म के मसले थे, एक तो ये था कि फिक्री तौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ऐसी किताबें लिखें नऊज़ु बिल्लाह कुरान के ख़िलाफ़ जिस कुरान में मुतज़ाद बातें हैं, ये हुआ, इस तरह सवालात निकालें और शकूक पैदा किए जाएं। जो आम आदमी है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आम बेचारा एक मुसलमान है, उसको भी मुनहरिफ करने की कोशिश की गई कि उसका अकीदा कमज़ोर किया जाए दीन इस्लाम के ऊपर और ख़ास कर जो है कुरान व इतरात के ऊपर। तो उसके लिए एक हथकंडा ये इस्तेमाल किया कि बादशाह ने उस वक़्त क्योंकि मुसलसल कहत पड़ रही थी और बारिश नहीं हो रही थी जिसकी वजह से कहत साली बढ़ रही थी, तो उस वक़्त जो है बादशाह ने मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों से बात की और कुछ राहिबों को बुलाया, कहा जी कि जनाब आप जाकर दुआ करें और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और पैगंबरों से तवसुल करें ताकि अल्लाह बारिश बरसाए और हमारी कहत साली ख़त्म हो जाए, अगर न मईशती दबाव में, जैसे अभी हम लोग वबा की वजह से मईशत का काफ़ी दबाव बढ़ रहा है मुल्कों में भी और आम आदमी में भी, तो इससे ज़्यादा बुरे हालात हुए थे। तो ये राहिब, तीन राहिब थे, ये तीनों चले गए मुख्तलिफ टाइम पे सहरा में। इनमें से हर एक जब भी आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करता था फौरन बारिश शुरू हो जाती थी, और ये हर एक 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 बार गए और हर बार बारिश हो गई। इसकी वजह से मुसलमानों के दरमियान एक अकीदा बना जी कि क्या हमारा मजहब इतना सच्चा है कि अगर हमारा कोई आलिम या बुजुर्ग आदमी या हमारा पेश नमाज या कोई शख्सियत जाकर इस तरह दुआ करे और दुआ करते ही फौरन बारिश हो जाए। ये शकूक व शुबहात माशरे में फैलाया गया हुक्मरानों की तरफ से, बादशाहों की तरफ से, जैसे आज भी है। तो बादशाहों ने ये आम कराना शुरू कर दिया जी कि ये आप लोगों के मजहब में इतना कोई दमखम नहीं है वगैरह। आम आदमी इससे मुतासिर होता है, जल्दी से मुतासिर हो जाता है, समझदार इंसान नहीं होता वो। समझदार इंसान पैगाम को देखता है, पैगाम के अंदर मौजूद सच्चाई और हकानियत और मंतिक दलील और मजबूती और इन चीज़ों को परखता है। आम आदमी बेचारा जो है उसके सामने जब इस तरह की एक अनहोनी चीज़ होती है तो वो फौरन मुतासिर हो जाता है। तो आम आदमी मुतासिर हो गया, जाहिर है। उस वक़्त इमाम अली मकाम के पास मुसलमानों का एक गुरु आया और इमाम सरस की कि मौला इस वक्त ये बड़ा मसला पैदा हो गया हमारे दरमियान, अब लोग शकूक पैदा हुए। उस वक़्त हजरत ने उन तीनों राहिबों को बुलाया, सहरा में लोग भी आ गए, और हज़रत ने उन राहिबों से कहा कि अच्छा आप एक एक करके दुआ मांगे। तो देखा कि वही बात हो गई कि हर राहिब दुआ मांगता है, बारिश होने लग गई। तो लोगों ने कहा देखें हज़रत अब तो आपके सामने ही ये होने लगा है, जो हज़रत के मसलन करीबी थे, जानने वाले थे, मारिफत रखते थे बिनवान नवासे रसूल और ख़ानदान इसमत तहारत के सिलसिले के तौर पर। हज़रत ने उस राहिब को करीब बुलाया और उसको हाथ उसके हाथ पकड़ कर देखा कि उसकी उंगलियों के दरमियान एक हड्डी थी। उस हड्डी को हजरत ने ले लिया और एक कपड़े में लपेट कर साथ में रखा, कहा कि राहिब को कहा अब दुआ मांगो बारिश होती है, अब राहिब दुआ मांगे कि बारिश नहीं हो रही है। उसके बाद हजरत जो है एक ऊंची जगह पे खड़े हुए और लोगों से मुखातब होकर कहा कि अयुहन्नास गौर से सुनो, कमाल इस राहिब का या इसके मजहब का या इसके अकीदे का नहीं है, न कमाल खुद इस राहिब का है, बल्कि असल कमाल इस राहिब के हाथ में मौजूद एक अल्लाह के नबियों में से एक नबी की जसद ताहिर अतहर मुतहर की हड्डी थी। वो हड्डी इसने हाथ में पकड़ी हुई थी और खुदा का कानून है कि जब पैगंबरों की हड्डी को हाथ में लेके इस तरह वास्ता देंगे या पैगंबर का हाथ थाम कर दुआ मांगेंगे या पैगंबर से मुतसिल होकर दुआ तो फौरन कबूल हो जाती है। तो कहा इन्होंने ये किया, कहा कि असल कमाल उस अल्लाह के नबी की है न कि इन लोगों की। इस तरह जो एक बहुत बड़ा मसला बन रहा था और लोग जो है दीन से कमज़ोर हो रहे थे दीनी अकीदे में, वो ख़त्म हो गया। तीसरी जो अहम चीज़ जो आपकी हयात तैयबा में है वो असर गैबत के लिए मुमिनीन को तैयार करना है। उसके लिए वकीलों का निज़ाम था और इश्तिहाद और मुश्तहिदीन का निज़ाम था। मुसलसल आप जो है यहाँ तक कि जब कोई शख्स आपके लिए कोई सवाल भेजता था दूर से मिसाल के तौर पर, या कोई वजूहात शरिया यानी खुम्स वगैरह भेजता था, तो आप वापस लौटाते थे, लाने वाले को कहते थे तुम चले जाओ, ये सवाल तुम्हारे शहर में फला वो मुश्तहिद बैठा है, वो हमारी तरफ से है, उसने हमसे सीखा है, हमने सिखाया है, तुम जाके उससे पूछो, वो तुम्हें जवाब दे देगा। आइंदा जब भी तुम्हें कोई मसला पेश आए उसी से पूछ लेना, ये खुम्स भी तुम जाके उसी को दे देना। ये सारे जो वकील थे मुज्तहिदीन थे, इनका जो वकील मुतलक था वो जिनाब उस्मान इब्ने सईद अल अमरी था, जो आपके नायब, जो आपके खास तरीन असाब में से थे और साहिबुल असर व जमान के नायबीन में से थे, जो कि एक घी या मक्खन बेचने वाले ताजिर की शक्ल में पूरा जो है आलम इस्लाम में घूमते थे। तो ये इमाम हुमाम इमाम अली मकाम की हयात तैयब ताहिर है, क्योंकि मुनासिबत है जनाब हज़रत फातिमा मासूमा सलामुल्लाहि अलैहा। आप जानते हैं कि हज़रत फातिमा मासूमा सलामुल्लाहि अलैहा अपने भाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए खुरासान का सफ़र करके निकलती हैं। और अलबत्ता एक बात जहन में रखें कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं और अहादीस हैं, कुरान मजीद की बाज़ आयात हैं, जिससे एक चीज़ वाज़ होती है कि ये जो मुकद्दस हस्तियां हैं, इनका सफ़र, इनका पड़ाव करना, इनका ठहर जाना, इनका उठ जाना, इनका सो जाना इरादे खुदाबंदी के मुताबिक होता है। जनाब हज़रत मासूमा का जो सफ़र है उसके पीछे भी इरादे खुदाबंदी नज़र आती है, ज़ाहरी तौर पर जो भी वजूहात बन जाएँ। इसी तरह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का सफ़र भी खुरासान की तरफ, मौजूदा मशहद की तरफ, वो भी एक मशियत इलाही नज़र आती है। ज़ाहरी तौर पर बेशक उसको मामून बुलाए या हारून बुलाए फ़र्क नहीं करता, क्योंकि मौला मुआहिदीन अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, इन्ना कुलूबुना अवियतुन लिमशियतिल्लाही फइज़ा शा अशैना, हमारे दिल जो है अल्लाह की मर्जी और रजा के ज़र्फ़ हैं, लिहाजा जब अल्लाह जो चाहता है वही हम चाहते हैं, लिहाजा हमारी जो हमारे जो इरादे हैं वो इरादे इलाही के साथ मुत्तसिल हैं। इसीलिए जो है ये जो कहा जाता है कि मर्जी आइमा मर्जी खुदा है, वो इस मानी में बिल्कुल दुरुस्त और 100% और 101% और 1000% सही है कि जनाब सईद कायनात के बारे में फरमाया था कि इस मेरी बेटी की रजा मेरी रजा और मेरी रजा रब की रजा है। उसी तरह है यहाँ पर भी फरमाया इन्ना कुलूबुना आवियतुन लिमशियतिल्लाह फइज़ा शाअ शेना। तो इस उन्वान से अभी अगर हम देखें तो पस जनाब हज़रत मासूमा सलामुल्लाहा का उम की तरफ सफ़र करना मशीयत खुदा में से था, इरादा खुदा था, इसलिए बीवी ने हरकत की। अब हम हज़रत मासूमा को इतना मकाम व मंजिलत क्यों दें, इसलिए कि खुद मासूम ने अपनी तमाम औलादों में से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइश ने अपनी इस बेटी को एक ख़ास मकाम दिया है। ये मकाम हमें दीगर औलादों में नज़र नहीं आती हैं, इमाम के बहुत सारी बेटियाँ थीं, इमाम की बहुत सारी औलादें थीं, उन सब को ये मकाम व मंजिलत नहीं दी है जो मकाम व मंजिलत हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाहि अलैहा को दी है, कि वही उसी तरह का जुमला आपने अपनी इस बेटी के बारे में फरमाया जो अल्लाह के रसूल ने सैयद कायनात के बारे में फरमाया था। वहाँ फरमाया था कि फ़ातिमा बिदअतुन मिन्नी है, यहाँ पर फरमाया फिदाहा अबूहा। वो आपने सुना है वाकया कि जो सवाल लेकर आए थे लोग दूर से, इमाम के बैत शरीफ में इमाम मौजूद नहीं थे और हज़रत मासूमा ने जवाबात तहरीर करके दिए, रास्ते में काफिले से मुलाकात हुई और इमाम ने उन जवाबात को चेक किया तो मालूम हुआ कि बेटी ने तहरीर फरमाया है और हर सवाल का जवाब वहीं दिया है, अगर इमाम होते तो भी वहीं जवाब देते। लिहाजा जब ये देखा तो फरमाया फिदाहा अबूहा, यानी अबूहा यानी सिर्फ यहाँ बेटी और बाप का रिश्ता नहीं, इमाम मासूम है हुज्जत खुदा ये इरशाद फरमा रहे हैं, बिल्कुल जो है जिस तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया। लिहाजा ये मुअज़्ज़मा बीबी एक खास मकाम व मंजिलत रखती हैं तमाम औलादों के दरमियान। इसीलिए आप देखते हैं कि कुम की जानिब सफ़र करना मशीयत खुदावंदी था, क्योंकि कुम को एक दुनिया के लिए मरकज़ बनाना था, इसीलिए फरमाया कुम हुज्जत है, कुम और उसके रहने वाले उलमा व मसलन फुकहा व मुज्तहिदीन हुज्जत हैं पूरी दुनिया के लिए, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो क्यों इतना बड़ा मकाम दिया है आखिर ज़माने में, अबला ज़ुहूर बकियतुल्लाह व हुज्जतुल्लाह व साहिब अल असर व ज़मान, इसीलिए आप सिर्फ 17 दिन कुम में रहती हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए 17 दिन आपके वजूद मुबारक का कुम में रहना आज कुम की तकदीर को बदल के रख देता है। ये जो है कुरे अर्ज़ की तकदीर बदल रहा है आज कुम, जैसे कि रिवायात में है, इंशाल्लाह की 12वें सरकार की जब आमद होगी कुरे अर्ज़ की तकदीर बदलेगी, और इसके बदलने में कुम वाले पहले मरहले में पहले दस्ते में होंगे। इसलिए कुम वाले नहीं, कुम का जो है वो ये नहीं कि कुम में जो काम करने वाले लोग नहीं, कुम में जो मुतकी परहेजगार लोग हैं, हौज़े इल्मिया हैं, फुकहा हैं, बामारिफत लोग हैं, बासलायत लोग हैं, बाकिरदार लोग हैं, इसलिए उनको अजत करार दिया, नहीं कि कुंभ में रहने वाला जो है उनमें बाज बिगड़े लोग भी हो सकते हैं, वो मुनहरिफ लोग भी हो सकते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, उस बात हो रही है उन हौज़ाए इल्मिया में मौजूद उन यानी तकद्दस और तकवा और परहेजगारी से लबरेज सीरत आइमा और कुरान इतरत को समझने और अपने ज़िंदगी पर नाफिज करने और दूसरों तक पहुँचाने का जो अमल अंजाम देते हैं उन उलमा व फुकाहा मुज्तहिदीन हाफिज़हुमुल्लाह की बात हो रही है। तो देखें कितना बड़ा। तीसरा जो एक बड़ा अहम फ़ायदा हुआ वो कुम और ईरान के अंदर वो ये हुआ कि ईरान में वो आपकी तशरीफ आवली और आपके बरदर बुजुर्गवार आठवें इमाम की तशरीफ आवली से पहले अहले तशरीह के कई फिरके मौजूद थे, मसलन इस्माइली बहुत ज़्यादा तादाद में थे, जैदी एक बड़ी तादाद में थे, लेकिन जब आप ये दो मुअज्जज़ और मुकर्रम मोहतरम हस्तियाँ जब वहाँ आईं तो ये सारा क्या हो गया, बदल गए, एक थी इस नाशरी में ढल गए सारे के सारे। ये आपके वजूद मुबारक, हालांकि 17 दिन सिर्फ आपने क़याम फरमाया है कुम मुकद्दस में, परवरदिगार आलम से 10 बदुआ होते हैं कि परवरदिगार इन ज़वात मुकद्दसा के सदक़े में हम गुनाहगार बंदे हैं, ख़ताकार हैं, लेकिन परवरदिगारा हमारे गुनाहों से सरफ नज़र फरमा, अपनी परवरदिगारा दरगाह में हमें ख़ास अगर मकाम के हम लायक नहीं हैं तो मशमूल रहमत फरमा, और जितने भी सामीन और नाजरीन YouTube के ज़रिए से या उसके ज़रिए से शामिल रहे हैं या शामिल हैं, परवरदिगार उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा, इमामिया ब्रेशिया हैं या जितने भी यहाँ बसने वाले मुसलमान भाई हैं इंसान हैं, परवरदिगार सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में जगह इनायत फरमा, इस वबा और बीमारी से आलम इंसानियत को निजात इनायत फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।